आज हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट है हिंदी और टॉपिक है विज्ञान की भाषा। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर बालकिशन राय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान की भाषा पर आज चर्चा हो रही है, तो आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे कि साहित्य के विद्यार्थी को साहित्य की भाषा जाननी चाहिए, विज्ञान की भाषा से क्या लाभ होंगे। तो विज्ञान की भाषा पर हम विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले पृष्ठभूमि के रूप में कुछ जानना बहुत जरूरी है। शिक्षार्थियों, यह आपका वैकल्पिक पत्र है। वैकल्पिक जो भाग है आपका, वह विशेष अध्ययन से संबंधित है और इसमें वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में आपने पहले पढ़ा और उसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसके बारे में पढ़ा, कंप्यूटर और हिंदी के बारे में पढ़ा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि विज्ञान का आज के जीवन में कितना अधिक महत्व है। तो विज्ञान का जब इतना महत्व है, तो जो विज्ञान में शब्दावली की जरूरत है, भाषा प्रयोग की जरूरत है, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, पिछले कुछ दशकों में हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आज हिंदी केवल मातृभाषा या राजभाषा या साहित्य की भाषा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों की भाषा हो गई है, बाजार की भाषा हो गई है। तो जो इसका इतना विस्तार हुआ है, तो भाषा का स्वरूप भी बदलता गया है और भाषा के स्वरूप में विशिष्टता होती है। हर प्रकार की भाषा अलग तरह की होती है। तो जब आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपको सभी प्रकार की भाषाओं की विशेषताओं को समझना जरूरी है, तभी आप उसका सार्थक प्रयोग कर सकेंगे, प्रभावी प्रयोग कर सकेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि भाषा के जो विविध रूप हैं वे कौन कौन से हैं। जैसे सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी, जो हम लोग बातचीत में करते हैं, उसके बाद साहित्यिक हिंदी है, जो हम कविताओं, कहानियों, उपन्यासों या अन्य गद्य विधाओं के माध्यम से पढ़ते आए हैं। उसके अलावा भाषा का एक रूप है कार्यालयी भाषा, जो विभिन्न कार्यालयों में काम काज के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में भाषा का एक अलग रूप प्रयुक्त होता है। उसके बाद विधि के क्षेत्र में, अर्थात लॉ के क्षेत्र में, हिंदी का अलग प्रयोग होता है। संचार माध्यमों में आप देखेंगे कि भाषा का एक अलग रूप दिखाई देगा, जिस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। विज्ञापन के क्षेत्र में अलग भाषा होती है और विज्ञान के, तकनीक के क्षेत्र में भाषा का रूप अलग होता है। तो जब आपने यह देख लिया कि भाषा के अनेक रूप हैं, तो अब आपको यह समझना है कि विज्ञान की जो भाषा है वह अलग कैसे है। तो इस पाठ में आप पढ़ने के बाद सामान्य भाषा और विज्ञान की भाषा में अंतर कर सकेंगे, विज्ञान की भाषा के प्रमुख लक्षणों पर टिप्पणी कर सकेंगे, वैज्ञानिक भाषा में साहित्यिक पारिभाषिक जो शब्दावली प्रयुक्त होती है उसकी भूमिका बता सकेंगे, और भाषा में वैज्ञानिक शब्दों का आप ठीक तरह से प्रयोग कर सकेंगे, और विज्ञान की भाषा के बोधन के विकास के लिए तालिका, सारणी, चार्ट आदि जो अलग अलग साधन होते हैं उनके महत्व को भी बता पाएंगे, और वैज्ञानिक विषयों के तार्किक प्रस्तुतिकरण की विधि को भी आप बता सकेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने के इतने सारे लाभ हैं। अब मैं शुरू करता हूं कि भाषा और विज्ञान की भाषा, यह दोनों कैसे अंतर है। जैसा मैंने बताया कि साहित्य में आप अलग अलग तरीके की भाषाओं का प्रयोग सीख चुके हैं, जिसमें अलंकारों का प्रयोग होता है, प्रतीक और बिंब का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ भाषा अलग तरह की होती है। विज्ञान की भाषा को अगर हम कहें तो वह सरल होती है, सार्वभौमिक होती है और तार्किक होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान में एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं आप ले सकते। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, पानी शब्द को देखें। यह पानी शब्द कवियों के लिए आंख से जुड़कर शर्म और अश्रुभ बनता है, तो गंगा के साथ संबद्ध होकर गंगा जल बनता है। परंतु वैज्ञानिकों के पास आकर यही पानी सारी भावनाओं से दूर मात्र एक तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जिसे H2O सूत्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। यह H2O जो है अंग्रेजी और गणित के अक्षरों और अंकों का केवल समूह नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट श्रेणी का परिचायक पदार्थ है। यह विज्ञान में ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है और ये अवस्थाएं विभिन्न ताप पर उपलब्ध होती हैं। द्रव रूप में जल सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है, ताप बढ़ने पर गैस, और इसका ताप कम होने पर ठोस बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि H2O की किस तरह से व्याख्या की जा सकती है। देखिए, भाषा जो विज्ञान की होती है उसकी बहुत उपयोगिताएं हैं। जैसे वर्षों से वैज्ञानिक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तथ्य प्राप्त हो रहे हैं या प्रक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में संग्रहित होती रही हैं, और उसे सूत्रों में बंध कर अन्य भाषाओं में अनुदित किया जाता रहा है और समाज को लाभान्वित किया जाता रहा है। जैसे मान लीजिए, यदि आज कोई नया प्रयोग होता है या कोई नया सिद्धांत बनता है तो उसे भाषा में लिपिबद्ध किया जाता है ताकि अन्य लोग भी उसका लाभ उठा सकें। इसके लिए चित्रों का भी सहारा लिया जाता है, और आप इक्वेशन देखते हैं गणित में देखते हैं या रसायन विज्ञान में देखते हैं तो वह विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां होती हैं। तो अगर और विशेषताएं हम विज्ञान की देखें शिक्षार्थियों, तो विज्ञान की भाषा सुनिश्चित होती है, अर्थात उसमें हमेशा हम बदलाव नहीं कर सकते, और उसमें सुबोधता भी होनी चाहिए, अर्थात आसानी से समझ में भी आना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि वैज्ञानिक अपनी भाषा को सरल रूप में प्रस्तुत करें और तर्क के साथ प्रस्तुत करें। इसमें वाक्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, क्लिष्ट शब्द जाल नहीं होने चाहिए और सीधे सीधे बात कहनी चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण जो विशेषता इसमें से और उभर कर आई, तार्किकता की, कि विज्ञान की भाषा तर्क पर आधारित होती है जिसमें कार्य कारण संबंध होता है। विज्ञान की भाषा में आप ऐसा नहीं प्रयोग कर सकते कि जहां तक हो सके या माना जाए या ऐसा हो जाए या कभी कभी, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप विज्ञान में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्वरूप निश्चित होता है। सामान्यतः जब हम जीवन में विज्ञान से इतर क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग करते हैं तो बहुत सी काल्पनिक बातें भी करते हैं, जैसे साहित्य में आप अंधविश्वासों की भी बात करते हैं, रूढ़ियों की भी बात करते हैं, जैसे बिल्ली को, बिल्ली का काटना जो है अशगुन माना जाता है, तो इस तरह की बातें आप विज्ञान में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में जो भी घटित होता है वह आस्था, विश्वास और अंधविश्वास पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, क्योंकि विज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है जिसे सिद्ध किया जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि तर्कों पर आधारित होने के कारण विज्ञान हमेशा तार्किक होता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं कि किस तरह से विज्ञान की भाषा तर्क पर आधारित होती है। जैसे गर्मियों में घड़े में पानी ठंडा रहता है, तो इसके पीछे तर्क है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से पानी लगातार रिसता रहता है, और यह पानी गर्मियों की शुष्क हवा के कारण शीघ्र ही भाप बन जाता है। इस प्रकार मटके के चारों तरफ की वायु में नमी रहती है और घड़े में रखा पानी ठंडा बना रहता है। तो आप जब इस सच्चाई को जानेंगे तब आप वैज्ञानिक दृष्टि से सोचेंगे और वही उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से यदि हम कहें कि रात को आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, तो साहित्यिक भाषा के संदर्भ में इसका प्रतीक अर्थ हो सकता है कि निराशा में थोड़ी सी आशा भी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब आप विज्ञान में टिमटिमाने का प्रयोग करेंगे तो वहां तारों का प्रकाश व्यक्ति की आंखों तक वायु में से गुजर कर आता है और वायु निरंतर गतिशील रहती है, इसलिए उसकी तहों की सघनता बदलती रहती है। इसलिए तारों से आने वाली किरणें भिन्न भिन्न कोणों से मुड़ी रहती हैं, जिसके कारण रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से व्याख्या करनी होगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान की भाषा कार्य कारण संबंध पर आधारित होती है और सूत्रबद्धता होती है, उसमें संक्षिप्तता भी होती है, बहुत विस्तार से आप किसी बात को नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा इसे और ज्यादा समझना हम चाहें तो एक और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम कहें कि खाने का सोडा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से इसे बनाया जाता है, और जब इसे देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो कठिन हो जाएगा, इसलिए वैज्ञानिक सूत्रों के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो यह कुछ विशेषताएं थीं जो मैंने बताया विज्ञान की भाषा की। अब एक महत्वपूर्ण और भी तथ्य है कि विज्ञान में हम पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका एक सुनिश्चित अर्थ होता है, और उस निश्चित अर्थ को हम बदल नहीं सकते। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर, उपग्रह आदि के द्वारा सूचनाएं भेजने, उपयोग करने या सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य निहित होता है, और सूचना प्रौद्योगिकी में इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन आदि व्यवस्थाएं आती हैं जो आम उपभोक्ताओं को सूचनाएं भेजती हैं और प्राप्त करती हैं। संचार साधन के अतिरिक्त रेडियो सेट, घर का टेलीविजन सेट, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें ये सारी बातें समाहित हैं। तो यह एक कुशलता होती है कि आप कम शब्दों में, पारिभाषिक शब्दों में आप एक बड़े कॉन्सेप्ट को, तथ्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं, जैसे खाने में नमक का हम लोग प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक इसे क्षार कहते हैं क्योंकि यह एक विशिष्ट क्षार तत्व सोडियम क्लोराइड है। रसायन विज्ञान में और भी क्षार तत्व हैं जैसे अमोनियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सबको आप नमक नहीं कह सकते हैं और नहीं खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हर शब्द में अंतर भी समझना पड़ेगा। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अधिकतर जीव विज्ञान के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सरीसृप, स्तनपाई, अंडज। तो सामान्य जीवन में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं और विज्ञान में एक विशेष अर्थ में इनका प्रयोग होता है। एक और उदाहरण से अगर हम समझना चाहें तो जैसे बोलचाल की भाषा में हम रफ्तार कहते हैं, स्पीड, लेकिन भौतिक विज्ञान में यह गति अर्थात वेलोसिटी और त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन का मिला जुला रूप है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। गति का अर्थ है कि किसी एक समय में विद्यमान स्थिर गति, जबकि त्वरण में गति स्थिर न रहकर बदलती रहती है। जैसे गाड़ी पल पल में गति आगे रफ्तार पकड़ती जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है कि जो विज्ञान की भाषा है और आम बोलचाल की भाषा है, उनके प्रयोग में अंतर कहाँ कहाँ है। जैसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि उस लड़के में बहुत ऊर्जा है, एनर्जी है। यहाँ यह शब्द ताकत या शक्ति का पर्याय है जो बोलचाल के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन भौतिक विज्ञान में जब हम ऊर्जा या एनर्जी या बल का प्रयोग करते हैं तो उसका विशेष अर्थ हो जाता है। जैसे इस कार्य में किस प्रकार की और कितनी ऊर्जा खपत खर्च होती है। हिंदी में इसी तरह से अनेक शब्द हैं जो मूल शब्द एक हैं लेकिन अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक शब्द है मूल, रूट, तो इसको अगर वनस्पति विज्ञान में प्रयोग करेंगे तो वहां पे जड़ के रूप में आएगा। जड़ अर्थात बरगद के पेड़ के की जड़ें जैसे दूर दूर तक फैली रहती हैं। और इसका हिंदी व्याकरण में प्रयोग करेंगे तो धातु के रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे चल धातु, चलने के लिए। लेकिन गणित में प्रयोग करेंगे तो मूल का अर्थ है वर्गमूल, अर्थात 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जब विज्ञान में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह एक विशिष्ट अर्थ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम परिभाषा देना चाहें शिक्षार्थियों पारिभाषिक शब्द का, तो कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्द विशेष विषय की विशिष्ट संकल्पनाओं के शब्द हैं। ये संकल्पनाएं समझ में आ जाएं तो भाषा आसानी से समझ में आ सकती है, उसका अर्थ समझना होगा, अन्यथा आप जो है उसको व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए भौतिकी विज्ञान के, उसी तरह से जैसे सूत्रबद्धता होती है विज्ञान में, उसे भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि जितने भी विज्ञान हैं वो सूत्रों के माध्यम से चलते हैं। मैंने पहले भी बताया कि गणित में ज्यादा सूत्र होते हैं, जैसे खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और गणित में आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जहाँ पे आपको इक्वेशंस को साबित करना होता है। उसी तरह से रसायन विज्ञान में भी जैसे मैंने बताया कि सोडियम के लिए, क्लोरीन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सबके लिए प्रतीक चिन्ह हैं, और उन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से तरह तरह की रिएक्शंस को, अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे H2O प्लस X बराबर क्या होगा, इस तरह से अलग अलग इक्वेशन उसमें दिए जाते हैं। एक और विशेषता जो मैंने बताई, विज्ञान की संक्षिप्तता, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक शब्द है वाष्पन, तो विज्ञान से जुड़े विद्यार्थी जानते हैं कि यह एक प्रक्रिया या प्रविधि है जिसका अभिप्राय है द्रव से गैस अथवा वाष्प बनने की प्रक्रिया। इसी तरह से एक और शब्द हम ले सकते हैं परपोषण, जिसका अर्थ है वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना सकने वाले प्राणियों पर निर्भर रहना और स्वपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाने वाले प्राणी या कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करना और अपना जीवन यापन करना ही परपोषण कहलाता है। तो इन उदाहरणों में आपने देखा कि शब्दों का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, और संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कपड़े धोने का सोडा बनाने की प्रविधि होती है, उसे हम सूत्रबद्ध पंक्तियों की बजाय सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए अगर बताना चाहें तो कम से कम 5 पृष्ठों में उसे बताना होगा। तो वहाँ बहुत रिपीटिशन अर्थात दोहराव की समस्या पैदा होगी, लेकिन विज्ञान में दोहराव से मुक्ति होनी चाहिए और वह संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विज्ञान की भाषा में अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए नियम बनाए जाते हैं, नए शब्द निर्मित किए जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का दिल्ली में गठन किया गया है और वहां से अलग अलग विषयों के शब्दावली के निर्माण का काम होता है। भौतिकी के लिए अलग है, रसायन विज्ञान के लिए अलग है, कृषि के लिए अलग है। तो इसका अर्थ है कि विज्ञान की जो शब्दावली होती है वह पूरी तरह से भिन्न होती है। अब एक और इसमें महत्वपूर्ण बात हम जान लेते हैं कि विज्ञान की जो वाक्य संरचना होती है वह भी विशिष्ट होती है, क्योंकि विज्ञान में जो अवधारणाएं होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अतः विज्ञान की भाषा में जो जो जुड़ाव होता है उसकी वजह से एक अवधारणा को हम स्पष्ट करते हैं। जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को हम समझना चाहें तो हम कहेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा या अन्यथा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो हल्के विलयनों में जीवाणुओं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों का विनाश अथवा उनकी वृद्धि का दमन कर सकता है, जैसे पेंसिलिन। तो आप देखें कि यहाँ पे पूरी वाक्य संरचना किस तरह से बनाई गई है। तो विज्ञान की जो है विशिष्ट भाषा शैली होती है, और इसमें जैसा मैंने बताया कि कार्य कारण की श्रृंखला बनती हुई चली जाती है और उसमें जो है सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जाता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण आपकी अध्ययन सामग्री में दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। और वाष्पन की जो मैंने बात बताई, उस वाष्पन की प्रक्रिया को आप अनेक तरह से समझ सकते हैं, और वाष्पीकरण, वाष्पायन, वाष्पदाब आदि अनेक जो संकल्पनाएं हैं विज्ञान में उसकी आप अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। तो इस चर्चा से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि वैज्ञानिक भाषा अन्य विषय क्षेत्रों की भाषा से भिन्न होती है तथा उसमें संक्षिप्तता होती है, तथ्यात्मकता होती है, उसकी वाक्य रचना अलग होती है, कार्य कारण का संबंध होता है और उदाहरण के द्वारा उसे स्पष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से विज्ञान की भाषा अलग और विशिष्ट होती है। अब हम जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेष शब्दावली आयोग की गठन किया है, स्थापना की उसकी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था। 1960 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग के अनेक कार्य निर्धारित किए गए। जैसे विभिन्न कार्यों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए, यह नियम बनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे तत्वों और यौगिकों के नाम के लिए हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। उसी तरह से बहुत से शब्द हैं जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं, जैसे मार्क्सवाद या फिर बायकॉट या एम्पियर या फॉरेनहाइट, ये नाम पर हैं ये सारे शब्द, तो उसको उसी रूप में ले लिया जाता है। उसी तरह से ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है, वे भी सार्वभौमिक शब्द हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे रेडियो, पेट्रोल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसमें हम बदलाव नहीं करते हैं। उसी तरह से गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं में जो संख्याएं हैं, प्रतीक हैं, चिन्ह हैं या सूत्र हैं, उनको भी हम नहीं बदलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रतीक रोमन लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे, परंतु संक्षिप्त रूप नागरिक और मानक रूपों में भी विशेषतः साधारण तौल और माप में लिखे जा सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर लिखते होंगे आप, तो सेंटीमीटर को सी और एम करके डॉट दे देते हैं, तो इस तरह का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर तीसरी बात है कि ऐसे देशी शब्द जो सामान्य प्रयोग के वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, उनको भी हम उसी तरह से ले लेते हैं, जैसे टेलीग्राम या एटम, ये आइटम के लिए परमाणु शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये उसके प्रचलित रूप हैं। अब हम ये देखें कि चौथा नियम है कि अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं उनको भी हम उसी रूप में ले सकते हैं, जैसे टिकट, सिग्नल या मशीन, मीटर, टॉर्च, ये शब्द हम उसी रूप में ले लेते हैं। बहुत से संकर शब्द हैं, जैसे क्लासिक्स के लिए क्लासिकी या गारंटेड के लिए गारंटित। इसी प्रकार एक बाधा शब्द निर्माण में आती है कि जो हिंदी में लिंग की संरचना है वह बड़ी विशिष्ट होती है, लेकिन ऐसा माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त किया जाए। और ऐसी समस्या आपको संधि और समास या सर्वनाम, विशेषण, इनमें भी आ सकती है, तो इसके लिए विद्वानों की एक कमेटी होती है जो निर्धारित करती है, इसके बारे में चर्चा करती है और एक निर्णय पर पहुंचती है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है कि कंप्यूटर की भाषा मूलतः अंग्रेजी में प्रचलित है तो हिंदी में मुश्किलें होंगी, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वास्तव में कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वह एक और शून्य की मशीनी भाषा होती है, इसलिए बुनियादी सिद्धांतों को किसी भी भाषा में समझा जा सकता है। एक और बात आती है कि किसी भी विशेष प्रजाति के विभिन्न प्राणियों या पदार्थों के बीच समानता स्थापित करने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इथेन, यह गैस अपने संपूर्ण परिवार के सदस्यों के साथ जुड़कर एक विशेष पहचान बनाती है। जैसे इथेन, प्रोपेन, मीथेन आदि अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्माण किया जाता है वह विभिन्न विभिन्न आधारों को सामने रखा जाता है और आपके अध्ययन सामग्री में पूरी सूची भी दी गई है विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों की जो परिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त होती है उसे आप जरूर देखें, जिससे आपको अभ्यास भी होगा और परीक्षा में शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि पहले भी इस पे चर्चा हुई थी कि भाषा में बहुत सी जगहों पे अलग अलग अभिव्यक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे तालिका और सारणी। इसका प्रयोग अक्सर आप देखते हैं सूचनाओं को एक साथ रखने के लिए किया जाता है। तालिका निर्माण द्वारा विभिन्न सूचनाओं को बोध के स्तर पर सुगम बनाया जाता है और इसी प्रकार सारणी भी कई सूचनाओं को एक साथ सरलता से समझाने में सफल होती है। तो इस तरह से अगर हम तालिका और सारणी का प्रयोग करें तो विस्तार से बच जाते हैं। और विज्ञान में तो कई बार भिन्न शब्दों का प्रयोग किए बिना बहुत सारी बातें सारणी के माध्यम से ही प्रस्तुत कर दी जाती है, अंकों का सहारा लिया जाता है, तो इसे भी समझना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण आप आम जीवन में भी देखते होंगे कि रेलवे की समय सारणी बनाई जाती है, इसे जिसमें आप स्टेशन पर रेल के आने और जाने के साथ कई सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक स्टेशन पर कौन सी गाड़ियां आती हैं, कब आती हैं, एक गाड़ी कहाँ कहाँ रुकती है या दो स्टेशनों के बीच यात्रा में कितना समय लगता है, कितनी देर गाड़ी रुकती है और कितने उसमें वातानुकूलित डिब्बे हैं, ये सारी चीजें आपको रेलवे समय सारणी में मिल जाती हैं। उसे आप शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो विज्ञान में तालिका और सारणी का प्रयोग अक्सर किया जाता है। जितने गणितीय सूत्र हैं वह आपको सारणियों के माध्यम से, आरेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उसी तरह से एक और महत्वपूर्ण प्रस्तुतीकरण है रेखीय चार्ट का, दंड चार्ट। इसका प्रयोग भी सामान्यतः विभिन्न स्थितियों की तुलना के लिए किया जाता है, जैसे शहरों की आबादी, अलग अलग विषयों में छात्रों का औसत अंक, जनगणना के अनुसार हर 10 साल में आबादी आदि। अगर इस तरह के डाटा आपको तैयार करने तो इसके लिए जरूरी है कि आप दंड चार्ट का प्रयोग करें। अब मान लीजिए हमें पूरे वर्ष के दैनिक तापमान का चार्ट बनाना हो तो उसे दंड चार्ट के माध्यम से ही बनाना आसान होगा। उसके अलावा एक प्रवाह चार्ट भी होता है, इसे अंग्रेजी में फ्लो चार्ट कहते हैं। तो यह भी एक अलग तरह की प्रस्तुति है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं को दर्शाया जाता है। इसे बनाने के लिए आवश्यक सूचनाओं को तर्कसंगत तरीके से क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है और प्रक्रिया का प्रवाह सामान्यतः बाएं से दाएं या शीर्ष से तल की ओर होता है। तो आपको कई उदाहरणों के माध्यम से अपनी सामग्री में समझाया गया है, उसे आप जरूर जाकर देखें और समझने की कोशिश करें कि इनका क्या महत्व है। तो अंत में एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहली बात है कि भाषा और ज्ञान परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। भाषा के बिना ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान के बिना भाषा का सही प्रयोग असंभव है, और सामान्य भाषा और विज्ञान की भाषा में अंतर होता है और अंतर कई रूपों में हो सकता है। सामान्य भाषा में हम सृजनशील शब्दों का प्रयोग करते हैं, पुनरुक्ति का प्रयोग करते हैं, कल्पनाशीलता रहती है, लेकिन विज्ञान में प्रामाणिकता होती है, तर्कसंगतता होती है, संक्षिप्तता होती है। उसी तरह से सामान्य भाषा में हम पर्यायवाची वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं अलंकारों का, लेकिन विज्ञान में हम पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि साहित्यिक भाषा और सामान्य भाषा अनेक रूपों में अलग है, वाक्य संरचना के स्तर पर भी अलग है, और निश्चित अवधारणाओं को निश्चित शब्दावली में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए विज्ञान में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, और विज्ञान में तालिका, सारणी, आरेख, प्रवाह चार्ट, इन सब का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा से विज्ञान की भाषा के बारे में आपको एक संपूर्ण बोध हुआ होगा और आपको स्पष्टता हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।